बैठे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको फिर से मेरा एक बार नमस्कार। मित्रों, मुझे भरोसा है कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और अपने कार्यों और परिवार के साथ आशीष प्राप्त कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आज के बाइबल अध्ययन के द्वारा भी हम कुछ नई बातों को सीखेंगे जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी होगी। पिछले अध्ययन में हमने मत्ती रचित सुसमाचार के 19 अध्याय और उसके 17 पद तक अध्ययन किया था, जिसमें हमने यीशु का यहूदिया में प्रवेश करना, विवाह और तलाक, यीशु का बच्चों को अपने पास आने देना और एक धनी नवयुवक के विषय में देखा था। आज हम उसके आगे के पद से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अध्ययन आरंभ करें, आइए हम परमेश्वर से इस अध्ययन के लिए सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें फिर से अपने जीवित वचन को सीखने का अवसर दिया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज जो कुछ भी हम सीखते हैं, आप हम सब की सहायता और मदद करें। जो अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी में है, बीमारी में है और जो निराशाओं में है, आप उनकी भी सहायता करें, ताकि आज के अध्ययन से वे अपने जीवन में शांति और चंगाई को प्राप्त कर सकें। प्रभु, आप सामर्थी हैं, आपके लिए कुछ भी कार्य कठिन नहीं है, इसलिए हम सबकी सहायता करें। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए हम आज के अध्ययन को आरंभ करें और मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 18 से 20 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा हुआ है, उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? तब यीशु ने कहा, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी साक्षी न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। नवयुवक ने उससे कहा, इन सब का तो मैं पालन करता आया हूं, फिर मुझ में क्या कमी है? मित्रों, यहां पर यह नवयुवक कह सका कि वह इन आज्ञाओं का पालन करता आया है, फिर भी उसने अपने जीवन में एक कमी महसूस की जो आज्ञाएं हमारे प्रभु ने उसे दी। वह 10 आज्ञा के आखिरी भाग को संगठित करती है, जिसका कार्य एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध से है। 10 आज्ञा के पहले भाग में मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ संबंध रखने के बारे में है। हमारे प्रभु ने इस भाग का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वह इस नवयुवक के विचार को भी इसके साथ आगे बढ़ा रहे थे। जो भी हो, अब प्रभु यीशु उसके विचार को परमेश्वर के साथ संबंध के लिए निर्देशित करते हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय और उसके 21 पद में आगे पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तब आकर मेरे पीछे चल। यदि तू सिद्ध होना चाहता है, जिसका अर्थ है पूर्ण होना चाहता है, यीशु का अनुसरण करने के द्वारा उसे पता चल जाता है कि वह पहली आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है जो मनुष्य के परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में है। प्रभु यीशु अपने क्रूस के मार्ग पर थे और यदि यह व्यक्ति उसका अनुसरण करता तो यह क्रूस का मार्ग होगा। जो भी हो, कुछ बातें हैं जो उसे यीशु के पीछे चलने के लिए रोक रही थी। उसका धनी होना उसके लिए रुकावट का कारण था, और हो सकता है कि आपके लिए भी और मेरे लिए भी कोई बिल्कुल भिन्न बात है जो हमारे रुकावट का कारण बनी है। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय और उसके 22 पद में आगे पढ़ते हैं, पर जब नवयुवक ने यह सुना तो शोकित होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। मित्रों, यह उसका धन था जो उसे प्रभु यीशु से दूर कर रहा था। हमारे दिनों में भी बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को प्रभु यीशु मसीह से दूर कर रही हैं। धनी होना सिर्फ एक कारण है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं। वास्तव में कलीसिया की सदस्यता भी बहुत लोगों को मसीह से अलग कर रही है, क्योंकि यह उन्हें एक छोटे सेलफोन के बैग में रख देती है जो उन्हें उनके पापों का सामना करने से बचाती है। वे सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ विधियों को पूरा किया है या उन्होंने अपनी कबूली दी है, और फिर भी वे किसी विधर्मी के समान इस पृथ्वी पर अपरिवर्तित होकर रहते हैं। मित्रों, क्या आज ऐसी कोई चीज है जो आपको मसीह से अलग कर रही है? क्या मार्ग में कुछ है जो आपको उससे दूर कर रहा है? खैर, इस व्यक्ति के लिए यह धन संपत्ति थी। हम मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय उसके 23 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। आज तक हमारे दिनों में भी यह सच है कि इस पृथ्वी पर अधिक धनी लोग, अधिक प्रभावशाली लोग और अधिक महान लोग मसीही नहीं है। हम मत्ती सुसमाचार के 19 अध्याय और 24 पद में आगे पढ़ते हैं, मैं तुमसे फिर कहता हूं कि किसी धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की अपेक्षा ऊंट का सुई के छिद्र में से निकल जाना अधिक सरल है। मित्रों, बहुत से लोग इसे मजाक नहीं समझते हैं, अर्थात इस मजाक को नहीं पकड़ पाते हैं जिसे प्रभु ने कभी कभी प्रयोग किया, और ये परिच्छेद भी एक उदाहरण है। कुछ लोग हैं जो बेतुका वर्णन को ही थामे रहते हैं कि यरूशलेम में एक फाटक था जिसे सुई का छेद कहा जाता था, जिसमें पार होने के लिए ऊंट को घुटने पर होकर जाना पड़ता था। इसलिए प्रभु कह रहे थे कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए एक मनुष्य को दीन बनना है। खैर, यह पूरे विषय को ही छोड़ देता है। हमारे प्रभु यहाँ पर एक वास्तविक ऊंट और वास्तविक सुई के छेद के बारे में कह रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं आपसे एक साधारण प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या एक सही ऊंट को सुई के छेद में पार होना संभव है? मैं सोचता हूं कि आपको इसका उत्तर मालूम है कि वह इसमें पार नहीं हो सकता है, यह असंभव है। लेकिन क्या यह परमेश्वर के लिए संभव हो सकता है कि वह एक ऊंट को सुई के छेद में से पार करे? ठीक है, पर यह परमेश्वर का काम नहीं है, परंतु वह इसे कर सकता है। यहां पर परमेश्वर के कहने का विषय है कि केवल परमेश्वर ही एक मनुष्य को पुनर्जीवित कर सकता है। किसी धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की अपेक्षा ऊंट का सुई के छिद्र में से निकल जाना अधिक सरल है। बहुत से लोग आज यह सोचते हैं कि जो कुछ भी वे हैं या थे उसके द्वारा से वे बचाए जाएंगे। जब आप इस बात को ढूंढ निकालते हैं कि आप एक पापी हैं, तो सच में आप बचाए जाते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में एक भिखारी जो उद्धार पाने के लिए कोई भी भेंट उसे नहीं दे सकता है, जब तक कि कोई व्यक्ति यह सोचता है और महसूस करता है कि वह परमेश्वर से उद्धार पाने के लिए कुछ कर सकता है या उसे कुछ दे सकता है, तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। पर एक ऊंट सुई के छिद्र में से पार हो सकता है। हम मत्ती सुसमाचार उसके 19 अध्याय और उसके 25 पद में आगे पढ़ते हैं, जब चेलों ने यह सुना तो वे बहुत चकित हुए और कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु के जवाब को सुने कि वो क्या कहते हैं। 19 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों के लिए यह असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसका विवरण यह है कि जहां तक किसी व्यक्ति की बात है कि आप कितने लापरवाह हैं, यदि आप इस बात को मान लेते हैं कि आपके पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु उसके पास एक भिखारी के समान खाली हाथ आते हैं, तो आप भी उद्धार के लिए एक सदस्य हैं। जब आप इस प्रकार से उसके पास आते हैं तो वह आपको उद्धार दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। यीशु अपने शिष्यों को इनाम देते हैं। हम मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय उसके 27 पद में पढ़ते हैं, इस पर पत्रस ने कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल पड़े हैं, हमें क्या मिलेगा? हमारे लिए सोचना सरल है कि शमौन पत्रस यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण या स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति को प्रकट कर रहे हैं। क्या हमारे प्रभु ने उसे डांटा? मत्ती 19 अध्याय उसके 28 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम जो मेरे पीछे चले आए हो, उस समय जब सब कुछ फिर नया हो जाएगा और मनुष्य का पुत्र अपने महिमामय सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हमारे प्रभु ने उसे नहीं डांटा, इसके बदले में उसने उससे कहा कि उसका कितना महान इनाम होगा। उसी तरह मैं विश्वास करता हूं कि आज हम मसीहियों को भी उस इनाम के लिए काम करना चाहिए। मित्रों, हम मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 29 और 30 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, और प्रत्येक जिसने मेरे नाम के लिए घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बच्चों या खेतों को छोड़ दिया है, वह इससे कई गुना अधिक पाएगा और अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होगा। परंतु अनेक जो प्रथम है अंतिम होंगे, और जो अंतिम है वे प्रथम होंगे। मित्रों, उधार पाए हुए लोगों के लिए एक इनाम होगा जिन्होंने मसीह यीशु के लिए त्याग किया है। बहुत से अनजान संत लोग हैं जिन्हें संसार नहीं जानता, एक दिन उन्हें उसकी उपस्थिति में प्रथम स्थान दिए जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि उस दिन बहुत सारे मसीही अगुओं को, जिन्होंने इस पृथ्वी में बड़ी प्रशंसा और जय जयकार प्राप्त की है, अनदेखा किया जाएगा और अज्ञात परमेश्वर के भक्तों को इनाम दिया जाएगा। मित्रों, हमारे सामने यह कितनी अद्भुत और महिमापूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पर अध्याय 19 समाप्त होता है, इसलिए हम अध्याय 20 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इस अध्याय में हम बारी के मजदूरों का दृष्टांत, यीशु अपने मृत्यु की निकटता की घोषणा चौथी और पांचवी बार करते हैं, जबकि यहूना और याकूब की माता अपने बच्चों के लिए दाहिने और बाएं बैठाने की मांग करती है। यीशु सड़क के किनारे दो अंधे व्यक्तियों को आंखें खोलते हैं। इन विषयों पर आज हम ध्यान करेंगे। मित्रों, यह अध्याय बारी के मजदूरों के दृष्टांत के साथ आरंभ होता है, जो पिछले अध्याय को जारी रखता है जिसमें यीशु इनाम पर चर्चा कर रहे थे। ऐसा लगता है कि यह अध्याय मत्ती में जो हलचल हो रही है उसे इस भाग के अंत में लाता है। इस अध्याय के बाद से मत्ती की गति में तेजी देखने को मिलती है और प्रभु सीधे क्रूस पर जाते हैं। स्वर्ग राज्य की जो वर्तमान स्थिति है उसके कुछ अंधेरे कोनों को भरने में यह अध्याय और एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। इस दृष्टांत में इनाम देने के नियम या सिद्धांत को बताया गया है। जितना काम आपने किया है उससे बढ़कर आपकी विश्वास योग्यता या कार्य की अपूर्वता है, इनाम देने को संचालित या नियंत्रित करता है। आइए देखें दाग की बारी में मजदूरों का दृष्टांत। हम मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके एक पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, स्वर्ग का राज्य उस स्वामी के समान है जो सुबह इसलिए निकला कि मजदूरों को अपनी दाग की बारी में काम करने के लिए लगाए। मित्रों, यह दृष्टांत पिछले अध्याय के दृष्टांत से बहुत मिलता जुलता है। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 30 पद में कहता है, परंतु अनेक जो प्रथम है अंतिम होंगे, और जो अंतिम है वे प्रथम होंगे। और पद 16 कहता है, इस प्रकार जो अंतिम है वे प्रथम होंगे, और जो प्रथम है वे अंतिम होंगे। बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि दोनों ही दृष्टांत के आरंभ में और अंत में विषय एक ही है, कि जो प्रथम है वे अंतिम होंगे और जो अंतिम है प्रथम होंगे। यह इसके चारों ओर लघु कोष्टक बनाता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 2 से लेकर के 5 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, उसने प्रति मजदूर 1 रुपया प्रतिदिन ठहरा कर उन्हें अपने दाग की बारी में भेजा। फिर सुबह लगभग 9 बजे जब वह बाहर आया तो दूसरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उसने उनसे कहा, तुम भी दाग की बारी में जाओ, जो ठीक है वही मैं तुम्हें दूंगा, और वे चले गए। फिर वह 12 बजे और 3 बजे के लगभग उसने बाहर निकलकर वैसा ही किया। मित्रों, छठवां पहर जो दोपहर अर्थात 12 बजे का समय था, और नवां पहर या दोपहर 3 बजे का समय था। हम मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 6 पद से लेकर के 15 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, लगभग 5 बजे फिर बाहर निकलकर उसने दूसरों को वहां खड़े पाया और उनसे कहा, तुम यहां दिन भर बेकार क्यों खड़े रहे। उन्होंने उससे कहा, क्योंकि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने कहा, तुम भी दाग की बारी में जाओ। संध्या होने पर दाग की बारी के स्वामी ने प्रबंधक को बुलाकर कहा, मजदूरों को बुलाकर अंत में आने वालों से आरंभ करके पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दे। लगभग 5 बजे संध्या समय भी जो मजदूर पर लगे थे, जब वे आए तो उन्हें 1-1 रुपया मिला। जब पहले लगाए गए मजदूर आए तो उन्होंने समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 रुपया मिला। जब उन्हें रुपया मिला तो वे यह कहकर स्वामी पर बुड़बुड़ाने लगे, ये जो बाद में आए इन्होंने तो एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे ही बराबर कर दिया है। जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और कड़ी धूप सही, पर उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, मित्र मैं तेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूं, क्या तूने मेरे साथ एक रुपया मजदूरी तय नहीं की थी? जो तेरा है उसे ले और चला जा। यह मेरी इच्छा है कि जितना मुझे दिया है उतना ही इसके बाद आने वाले को भी दूं। क्या मेरे लिए उचित नहीं कि जो मेरा है उससे जो चाहूं सो करूं? क्या मेरा उदार होना तेरी आंखों में खटकता है? यह एक अद्भुत दृष्टांत है जो एक महत्वपूर्ण सत्य को दर्शाता है। यह ऐसा नहीं है कि आपने कितने समय तक काम किया और न ही कि किस स्थान पर किया, या आपके पद की महत्वता को जो आपके इनाम का निर्णय करती है, बल्कि जो कार्य परमेश्वर ने आपको करने के लिए दिए थे उसके प्रति आपकी विश्वासयोग्यता के लिए आप पुरस्कृत किए जाएंगे। इस पर बिना ध्यान दिए हुए कि आपने कितना छोटा या कितना बड़ा या कितना महत्वपूर्ण काम किया है। एक पादरी साहब ने कहा कि मैं हमेशा यह महसूस करता रहा कि किसी दिन प्रभु इस छोटी प्रिय स्त्री को इनाम देंगे जो मेरे कलीसिया की एक सदस्य है। मैं अपने एक सहकर्मी की ओर मुड़कर कहूंगा, क्या आप उसे जानते हैं? वह कहेगा, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना, उसने कभी गीत समूह में नहीं गाया, वह हमारे किसी भी संस्था की अधिकारी नहीं थी और उसने रविवार विद्यालय के बच्चों को भी कभी नहीं पढ़ाया। उस स्त्री ने कुछ भी नहीं किया और उसे देखो कि प्रभु उसे किस तरह से इनाम दे रहे हैं। संभवतः हम ढूंढ निकालेंगे कि यह स्त्री एक विधवा थी जो अपने जवान बेटे के साथ थी। उसने कभी भी हजारों के बीच में प्रचार नहीं किया जैसे कि कुछ प्रचारक और प्रवक्ता करते हैं, परंतु उसने अपने छोटे बच्चे की देखभाल बड़ी विश्वासयोग्यता के साथ की और वह एक अन्य देश में प्रभु का सेवक बना। वह विधवा स्त्री अपने कार्य में विश्वासयोग्य थी जिसे परमेश्वर ने उसे करने के लिए दिया था। हो सकता है कि कुछ लोग विरोध करें और कहें कि यह निश्चित है कि जैसे मैंने कठिन काम किया वैसे उसने नहीं किए, और हो सकता है कि वह सच है, परंतु जो काम आपने किए हैं उसके लिए वह आपको इनाम देने नहीं जा रहे हैं। वह आपको उसके द्वारा दिए गए काम को विश्वास योग्यता के साथ करने के लिए इनाम देंगे जिसके लिए आपको बुलाया गया था। मेरे मित्र, शायद परमेश्वर ने आपको अपने लिए कुछ महान कार्य करने के लिए नहीं बुलाया है, परंतु क्या आप उस कार्य के लिए विश्वास योग्य हैं जिसे उसने आपको दिया है? यीशु चौथी बार अपने मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 17 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, जब यीशु यरूशलेम जाने को था तो 12 चेलों को एकांत में ले जाकर मार्ग में उनसे कहने लगा। मित्रों, इस भाग को शारीरिक और भौगोलिक गति पर ध्यान दें। यीशु और उसके शिष्य यर्दन की घाटी से बाहर जा रहे हैं और यरूशलेम के निकट पहुंच रहे हैं जहां उसे क्रूस पर मरना है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय और उसके 18 और 19 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं, मनुष्य का पुत्र मुख्य याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसे मृत्यु दंड के योग्य ठहराएंगे। वे उसे गैर यहूदियों के हाथों में सौंपेंगे कि उसका उपहास करें, कोड़े मारें, उसे क्रूस पर चढ़ाएं और तीसरे दिन वह जिलाया जाएगा। हमारे प्रभु इससे अधिक स्पष्ट शब्दों में नहीं बोल सके। यह चौथी बार थी जब वह उन्हें यह कह रहे थे, वह भी विस्तृत रूप में, कि उसके साथ वास्तव में क्या होने वाला है। किसी तरह से या अन्य कारण से शिष्य इसे नहीं समझ पाए, बस यह उनकी योजना में ठीक नहीं बैठा। जो भी हो, जैसे मैं और आप अभी पढ़ते हैं तो हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि यह मसीह का खुलेआम कहना था कि उसे यरूशलेम मरने के लिए जाना है। आइए हम उसके महत्व पर विचार करें। वह स्व इच्छा से वहां आपके लिए और मेरे लिए मरने को गए। यही कुछ बात है जिसके बारे में विचार करना है कि यीशु के शिष्य बिल्कुल ही विश्वास नहीं कर पाए। आगे हम देखते हैं कि यूहन्ना और याकूब की माता का निवेदन। यीशु के आने वाली मृत्यु के विषय में महत्वपूर्ण घोषणा के समय यूहन्ना और याकूब की माता यीशु के पास आकर यीशु से एक कृपा करने की मांग करती है। जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय और उसके 20 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, तब जब्दी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ उसके पास आई और दंडवत करके निवेदन करने लगी। मित्रों, किसी दूसरे अवसर पर और किसी अन्य समय में यह निवेदन एक माता के लिए स्वाभाविक होता है जो अपने बच्चों के लिए अभिलाषी थी। जो भी हो, इस उदाहरण में वह वातावरण और उसकी समझ में चूक कर गई जो वास्तव में उस समय घटने वाली थी। प्रभु उसे शास्त्र के पदों का उदाहरण देते हुए उत्तर देते हैं। मैं उस भाग को छोड़ रहा हूं जो हमारे अच्छे शास्त्र के भाग में नहीं है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 22 और 23 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, परंतु यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। क्या तुम वह प्याला पी सकते हो जिसे मैं पीने पर हूं? उन्होंने कहा, हम पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं बैठाना मेरे अधिकार में नहीं है। यह तो उन्हीं के लिए है जिनके लिए मेरे पिता के द्वारा तैयार किया गया है। मित्रों, जब हम इन दोनों पदों को विलोपन के साथ पढ़ते हैं तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। मेरे मित्र, यहाँ पर आप इसके अर्थ को न चुकें, क्योंकि यह आज के मसीहों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रभु यह नहीं कह रहे हैं कि उसके दाहिने हाथ की तरफ और बाएं हाथ की तरफ किसी के लिए भी जगह नहीं है। वह कह रहे हैं कि वह मनमाने ढंग से यह पद याकूब और यहूना या किसी को भी नहीं देंगे, बल्कि यह स्थान उन लोगों के लिए है जो अपने आप को उसके लिए तैयार करते हैं। इसे ध्यानपूर्वक देखें कि स्वर्ग मांगने वालों के लिए है। आप उद्धार के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, आप मसीह में विश्वास के द्वारा उसकी अद्भुत अनुग्रह से बचाए जाते हैं। जो भी हो, मेरे प्रिय मित्रों, आपका पद, आपका इनाम स्वर्ग में आपके इस पृथ्वी पर किए गए कार्यों के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसा लगता है कि मसीहों ने इस क्षेत्र को खो दिया है। आप अपने लिए किस प्रकार का स्थान तैयार कर रहे हैं? मेरा व्यक्तिगत रीति से मसीह के दाहिने या बाएं हाथ के स्थान का कोई लक्ष्य नहीं है। मुझे भरोसा है कि मैंने उसे खो दिया है, परंतु मैं एक स्थान के लिए कार्यरत हूं। हम सब इसे अवश्य कर रहे हैं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 14 पद में पौलुस ने कहा, लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं कि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मित्रों, आज मसीहों के साथ समस्या यह है कि बहुत थोड़े ही लोग हैं जो कुछ जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उद्धार को एक मुफ्त उपहार के रूप में पहचानने की आवश्यकता है, परंतु हमें उस इनाम को प्राप्त करने के लिए दौड़ में भाग लेने की भी आवश्यकता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय और उसके 24 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, यह सुनकर दसों चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। मित्रों, यह सुनकर दसों चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। क्या आपको मालूम है कि वे रोष से क्यों भर गए? यह इसलिए था क्योंकि वे उसके दाहिने और बाएं स्थान को चाहते थे। मित्रों, यहाँ पर हमारा समय समाप्त होता है, इसलिए हम अपने इस अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन अगले अध्ययन में हम इसके आगे के विषयों पर विचार करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबको इस अध्ययन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। कृपया आप पत्र के द्वारा हमें अपने आशीषों को अवश्य बताएं, ताकि हम सब मिल करके प्रभु का धन्यवाद कर सकें। इसके साथ ही यदि आपके पास कोई प्रार्थना के विषय हैं या इस कार्यक्रम से संबंधित कोई प्रश्न है तो हमसे अवश्य पूछें, ताकि हम आपकी सहायता करने पाएं। हाँ, तो मित्रों, हमें आपके खत का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखें और प्रभु के वचन पर बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
यीशु है मेरा मुक्ति धार, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। यीशु है मेरा मुक्ति धार, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। आए विपत्ति चाहे तूफान, आए विपत्ति चाहे तूफान, उसमें मैं पाता शरण स्थान, उसमें मैं पाता शरण स्थान। यीशु है मेरा मुक्ति धार, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। पाप की लहरों से घिरा हुआ था, ना कोई मंजिल और ना किनारा। पाप की लहरों से घिरा हुआ था, ना कोई मंजिल और ना किनारा। वो आया बनकर मेरा सहारा, वो आया बनकर मेरा सहारा। पाप की लहरों से मुझे उबारा, पाप की लहरों से मुझे उबारा। यीशु है मेरा मुक्ति धार, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। जीवन था मेरा पाप की खाई, सब दूर निराशा रहे अंधेरी। जीवन था मेरा पाप की खाई, सब दूर निराशा रहे अंधेरी। क्रूस की ओर जब दृष्टि उठाई, क्रूस की ओर जब दृष्टि उठाई, किरण जीवन की हृदय में आई, किरण जीवन की हृदय में आई। यीशु है मेरा मुक्ति धार, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। आए विपत्ति चाहे तूफान, आए विपत्ति चाहे तूफान, उसमें मैं पाता शरण स्थान।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसे